शांति। मनुष्य जीवन वास्तव में सबसे श्रेष्ठ जीवन है और मानव ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है, जिसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि ईश्वर ने जब मनुष्य को पैदा किया तो अपने जैसा बनाया। God made man in his own image, अर्थात अपने सारे ही गुण ईश्वर ने मनुष्य में भरे और मानव देव समान था, श्रेष्ठ था, उसमें दिव्यता थी, दैवी गुण थे। लेकिन आज का मानव अपनी दिव्यता की शक्ति को खो बैठा है और फलस्वरूप अनेक प्रकार के विकारों के वश में आ चुका है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अभिमान, अनेक प्रकारों के विकारों से ग्रसित है और फलस्वरूप आज की दुनिया कलयुग कहलाती है। और हम तो समझते हैं केवल कलयुग ही नहीं, लेकिन घोर कलयुग हो गई है। प्रकृति जो मनुष्य के सुख के लिए है, आज प्रकृति हमें दुख दे रही है। प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा आज मानव अनेक प्रकार के कष्टों को झेल रहा है। इन सब का कारण क्या है? कारण है मनुष्य के कर्म। तो आज जो मनुष्य के कर्म विकारों के वशीभूत हो चुके हैं, ये सारे ही कर्म पाप के खाते में जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखें काम वासना। आज काम वासना के वशीभूत इंसान अपने कर्तव्य को भूल चुका है। भगवान हमें यही दृष्टि दिखाते हैं कि हे बच्चे, हे मेरी आत्माएं, तुम सब मुझ परम पिता परमात्मा की संतान हो, आपस में भाई भाई हो। लेकिन आज का इंसान उस पवित्र दृष्टि को कहां अपना रहा है? स्त्री पुरुष का भेद तो ये सृष्टि की आदि रचना है, लेकिन इस भेद को हम केवल इसी अंतर तक समझें कि भगवान ने स्त्री और पुरुष को संसार में रचना पैदा करने लिए बनाया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रचना उत्पन्न करना, जिसको हम इंग्लिश में प्रोक्रिएशन कहते हैं, जिसके लिए मनुष्य काम वासना का आधार लेता है, आज वही प्रोक्रिएशन का रूप केवल रिक्रिएशन का ही रूप हो चुका है। अर्थात मनुष्य अपने इंद्रियों के सुखों के लिए काम वासना के वशीभूत हो गया है और इसका फल हम देख रहे हैं। काम वासना की अति का फल है आज की दुनिया में बलात्कार की स्थिति। स्त्री की कोई सुरक्षा नहीं और मानव अपने इंद्रियों के वश होकर के, यूं कहें कि आसुरी वृत्तियों के वशीभूत होकर के, पशु से भी बदतर उसकी हालत हो गई है। पशु में तो बुद्धि नहीं, लेकिन मनुष्य में बुद्धि तो है। काम वासना के वशीभूत होकर इंसान यह भूल जाता है कि वह इस संसार में क्यों आया। वो आया ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए, वह आया केवल इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए, परंतु अपने आप को भूला, अपने कर्तव्यों को भूला, अपने सच्चे पिता को भूल गया और इंद्रियों के वशीभूत होकर के वह काम वासना के अधीन होकर विकर्म का भागी बनता जा रहा है। तो वास्तव में हमें अपनी दृष्टि को अब पवित्र बनाने की आवश्यकता है। यह दृष्टि काम वासना की अग्नि में जल रही है। हम किसी स्त्री को देखते हैं, क्या हमारे मन में यह उत्पन्न होता है कि ये भी एक देवी है, ये भी ईश्वर की रचना है, ये भी एक शक्ति है, भगवान ने इसे पैदा किया है, तो हमें इसको उस पवित्र दृष्टि से देखना है। लेकिन आज का इंसान कामातुर होकर के अपने बुद्धि को भी नष्ट कर बैठा है। तो कैसे इस दृष्टि का परिवर्तन करें, उसके लिए एक ही मात्र उपाय है कि उसे भी आत्मा देखा जाए। संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी वृत्ति में जागनी चाहिए और दृष्टि में पवित्रता आनी चाहिए, तभी इस संसार से काम वासना का भूत समाप्त होगा। वरना आज के युग में यह विकार इतना बढ़ता जा रहा है, जो यह कलयुग ही नहीं रहा लेकिन घोर नरक बन गया है। काम वासना के वशीभूत होकर अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तो इंसान में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधी इंसान अग्नि की तरह खुद भी जलता है तो दूसरे को भी जलाता है। जैसे अग्नि का गुण है जलना और जलाना, इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति भी जलता और जलाता है। कहावत प्रसिद्ध है कि क्रोधी के घर के मटके ही सूख जाते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले तो उसका खून सूख जाता है। पानी के मटके तो बाद की बात है। क्रोध में आकर के इंसान आदि मध्य अंत का जरा भी नहीं सोचता, इसका क्या परिणाम होगा, इससे क्या मुझे फल मिलेगा, कुछ भी नहीं सोचता। क्रोध एक भूत के समान है जिसके वश होकर के इंसान अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और आज के इस कलयुगी दुनिया में हम परिणाम देख रहे हैं। क्रोध का चरम स्वरूप हत्याएं, कितनी दुखदायक है ये हत्याएं। आज एक मासूम बच्चा पैदा होता है, कल एक कली बनता है, फूल बनने की ओर वह अग्रसर होता है और फूल बनने से पहले उसकी हत्या की जाती है। क्या हमें ये अधिकार है? क्या जरा भी हम अपने मन को कुछ आश्वासन दे पा रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्रोध। जब क्रोध मनुष्य को आता है वह कुछ भी नहीं देखता, यहां तक कि मां भी अपने बेटे की हत्या कर लेती है, एक बच्चा भी अपने पिता की हत्या कर लेता है। उस समय मां ये भूल जाती है कि मैंने ही तो इसे जन्म दिया है। बच्चा भूल जाता है कि इस पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं इसकी हत्या कर रहा हूं। एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर लेता है, किसको यह अधिकार है? भगवान ने हमें यह अधिकार नहीं दिया। भगवान जो हम सबके परम प्रिय है, हमारे परम पिता है, उसने यह अधिकार हमें नहीं दिया है तो फिर किसने दिया? हम स्वयं ही मालिक बन बैठे हैं। यह ईश्वर की रचना है, सृष्टि भगवान की है, लेकिन इस भगवान की सृष्टि पर हम अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं और फल स्वरूप प्रकृति के द्वारा अपने ही पाप कर्मों का दंड भोग रही है। तो ये क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है? वास्तव में क्रोध की उत्पत्ति भी तो मन से होती है। जिस प्रकार शांति की उत्पत्ति मन से होती है, क्रोध का संकल्प भी पहले मन में आता है, मन से फिर वचन में आता है और वचन से फिर कर्म में आता है। तो जिस प्रकार पेड़ को पानी देने के लिए बीज को पानी देने की आवश्यकता है, इसी प्रकार क्रोध के पेड़ को खत्म करने के लिए भी उसके बीज को खत्म करने की आवश्यकता है। और बीज है क्रोध के संकल्प। जिस प्रकार अंधकार को समाप्त करने के लिए रोशनी की आवश्यकता है, इसी प्रकार क्रोध रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए ज्ञान का प्रकाश मन में लाने की आवश्यकता है। और वह ज्ञान का प्रकाश है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये संकल्प आते ही क्रोध का ज्ञान खत्म हो जाता है और मन में शांति की अनुभूति होती है। तो ये काम और क्रोध वास्तव में दोनों ही नरक के द्वार हैं। आज इंसान इन दोनों विकारों के वशीभूत होकर इस सृष्टि को नरक बना चुका है और इन दोनों का कारण है देह का अभिमान। इस देह को के अभिमान को मिटाना अति आवश्यक है अगर इस संसार से हम ये काम और क्रोध के भूत समाप्त करना चाहते हैं, जीवन में संसार में शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो इन दोनों विकारों को समाप्त करना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। ये काम और क्रोध जो जीवन को नरक बना चुके हैं, जिसके फलस्वरूप इंद्रियां भी आज अपनी शक्ति को खत्म कर चुकी है, तो मन भी अपनी शक्ति को खत्म कर चुका है, तो क्यों नहीं आज से हम यह दृढ़ संकल्प करें कि ये काम और क्रोध को हम समाप्त करेंगे, उसकी जगह आत्मिक प्रेम मन में जगाएंगे, आत्मिक शांति मन में जगाएंगे। और ये प्रेम और शांति ही संसार से काम की अग्नि और क्रोध की अग्नि को समाप्त करेगा। इसके बाद तीसरा विकार, यह भी एक बहुत बड़ा विकार है, जिसको लोभ की वृत्ति कहा जाता है। लोभी के लिए कहावत है कि लोभी नर कंगाल है। जो व्यक्ति लोभी होता है, चाहे वह करोड़पति क्यों न हो, फिर भी वह कंगाल है, क्योंकि जिस धन को उसने प्राप्त किया है, उस धन से सेवा नहीं करता और फलस्वरूप आत्माओं की दुआएं उसे प्राप्त नहीं होती, तो उसका ही धन उसे कभी भी सुख नहीं देगा। लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। निर्लोभी व्यक्ति को ईश्वर सदा देता रहता है, क्योंकि उसके पास जो है वो सबके लिए है। आज इंसान लोभ के वश होकर के कितनी डिमांड्स रखता है दुनिया में, जितना उसके पास है, वास्तव में अगर वो उससे संतुष्ट रहे तो मैं समझती हूँ हर एक व्यक्ति इस संसार में सुखी हो सकता है। जैसे कहावत प्रसिद्ध है, देयर इज एवरीथिंग फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। आवश्यकता के लिए प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, अनाज धरती दे रहा है, जल प्यास बुझाने के लिए हमारे पास पर्याप्त है, वायु हमें ताजगी प्रदान कर रही है, अग्नि हमें शक्ति दे रही है, लेकिन इन पांच तत्वों का क्योंकि हम दुरुपयोग कर चुके हैं और आवश्यकता के बदले लोभ के वश हो चुके हैं, तो प्रकृति उसका प्रकोप मनुष्य पर ही ला रही है। प्रकृति को अनाज देकर इंसान को सुख देना चाहिए, लेकिन बाढ़, भूकंप, वायु दूषित, ये सब जो कारण हमारे सामने आ रहे हैं, इसलिए जो आवश्यकता है और हमें मिल सकता है आज वह भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो लोभ को जीतना ये भी बहुत जरूरी है। लोभ विकार भी मनुष्य को बहुत दुख देता है। कहावत प्रसिद्ध है कि स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसी प्रकार जितनी हमारे पास साधन है, शक्ति है, उस अनुसार हम कार्य करें। अगर हमारे पास साधन नहीं है तो हम ज्यादा इच्छा रख करके, लोभ रख करके उन साधनों के पीछे जाएंगे तो एक दिन ये भी होगा कि साधन ही हमें दुख देंगे। साधन से पहले साधना की आवश्यकता है, अंतर से वैराग की आवश्यकता है, अंतर से त्याग की आवश्यकता है। अगर मैं दो रोटी खा रही हूं पर एक व्यक्ति भूखा है तो मैं दो रोटी के बदले एक रोटी खाकर उस व्यक्ति को एक रोटी दे सकती हूं। ये कभी नहीं होगा कि इंसान कम खाकर मर जाए। हाँ, अधिक खाकर मर सकता है, मोटापा मनुष्य को मार सकता है, लेकिन कम खाकर और गम खाकर इंसान बहुत बड़ी आयु जी सकता है। तो क्यों नहीं हम इस लोभ की वृत्ति को समाप्त करें। लोभ के कारण आज संसार में तेरा और मेरा आ चुका है। इंसान तो इंसान ही है, कितना चाहिए इंसान को, पेट को कितना चाहिए। पेट को अधिक नहीं चाहिए, लेकिन पेटियों को तो आप जितना डालेंगे, जितना पेटियां भरेंगी उतनी कम ही लगेंगी, पर पेट अधिक नहीं चाहता है। तो क्या हम पेट के लिए पाप करना चाहते हैं जो हमसे अधिक नहीं मांगता? अगर हम उन्हें अधिक देंगे तो शायद बदहजमी होकर के हमें ही हमारा लोभ समाप्त कर ले। तो हम इस लोभ के विकार को अवश्य जीते। आज लोभ के कारण तेरा और मेरा इतना तो संसार में बढ़ चुका है जो मनुष्य की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। इंसान तो वही है, दो हाथ दो पैर वाला, लेकिन इंसान की जब वृत्ति बदल जाती है तो वही इंसान राक्षस बन सकता है। वही इंसान जब उसकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वो देव कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा, कहावत प्रसिद्ध है कि जो देवता ही समान है वो तो कहेंगे मेरा और तेरा क्या, ये तो सब भगवान का है, सब ईश्वर का है। जब हम इस दुनिया में आए तो क्या लेकर के आए, हाथ खाली आए और हाथ खाली जाएंगे। इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तु हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। यहां तक कि आत्मा जब इस शरीर में आई तो शरीर भी उसका अपना नहीं था, और जब निकल जाएगी तो शरीर को भी अपने साथ नहीं ले जाएगी। बाकी संसार की और कौन सी वस्तु है जिसे वह साथ ले जाएगी? तो दैवी व्यक्ति, दैवी वृत्ति वाला वो है जो कहेगा कि क्या है मेरा, क्या है तेरा, ये सब है ईश्वर का। लेकिन साधारण इंसान कहेगा नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है, मुझे तुम्हारी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं अपनी वस्तु तुझे नहीं दूंगा, ये तेरा और ये मेरा, तेरा तुम रखो, मेरा मैं रखूंगा, मैं अपना नहीं दूंगा, तेरा मुझे नहीं चाहिए, मेरा क्या। लेकिन आसुरी वृत्ति वाला इंसान
उससे भी बदतर है। वो कहेगा मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, अर्थात वो चोरी करके डाका लगाकर खून करके हेरा फेरी करके भ्रष्टाचार करके अनेक प्रकार के पाप कर्म करके वो दूसरे की भी वस्तु को हथियाएगा अपनाएगा और फलस्वरूप लोभ का शिकार बनने के कारण लोभी इंसान कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। तो क्यों नहीं हम इस लोभ के विकार को जीतें और अपने जीवन में संतोष का गुण धारण करें। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज कई ऐसे इंसान हैं जिनको इतना भी प्राप्त नहीं है जो हमें प्राप्त है, तो हमें उनको देखना है और उनको सहयोग देना है, उनको अपना हर प्रकार से अपनी वस्तुओं से उनको सुखी करना है ताकि भगवान की रचना में हर एक व्यक्ति सुखी रह सके। तो जितना ही काम और क्रोध ये विकार इंसान के लिए दुख के कारण है उतना लोभ भी दुख से कम नहीं। काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। जब हम इन तीनों बातों को तीनों अवगुणों को या तीनों भूतों को पहचानेंगे उन पर जीत प्राप्त करेंगे तो सच्ची शांति और संतोष का जीवन जी सकेंगे और ये मानव जीवन जो हीरे तुल्य जीवन है उस हीरे समान जीवन को श्रेष्ठ बना करके अनेकों को सुखी बना सकेंगे। अब इसके अलावा अन्य दो विकार है जो हम आगे के प्रवचन में आपको सुनाएंगे। ओम शांति।